नंबर के रजिस्टर में 101 पेज पर 22489 का पैकेट लाए। मीठे मीठे रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। अक्सर ये बात की मुरली में क्यों आता है बार बार? रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। इसलिए याद दिलाते हैं कि अगर कोई देह अभिमान में बैठा हो, देह अहंकार में बैठा हो तो अलर्ट हो जाए। देह धन वालों को नहीं समझाते, उनकी समझ में आवेगा भी नहीं। याद की यात्रा भी सिखलाए रहे हैं रूहानी बच्चों को। याद की यात्रा का अर्थ भी बच्चे समझते होंगे, भक्ति मार्ग में भी सभी याद करते हैं, देवताओं को याद करते हैं, शिव बाबा को याद करते हैं। परंतु ये पता नहीं था कि याद से ही विकर्म विनाश होंगे। अगर ये पता होता कि याद से ही विकर्म विनाश होते हैं तो एक को याद करते कि देवताओं को भी याद करते? एक को याद करते, क्योंकि एक ही कर्माकर्म विकर्म की गति समझाने वाला है। और एक ही सदाशिव है जो कभी बंधन में नहीं बनता, कर्मों के बंधन में। तो उसी की याद से विकर्म विनाश होंगे। बच्चे जानते हैं बाप पति तो पावन है, क्या है पतित पावन का क्या अर्थ? एक तो अर्थ हुआ पतितों को पावन बनाने वाला, और जो पतितों को पावन बनाने वाला है वो ही पावन बनाने की युक्ति बताते हैं। क्या युक्ति बताते हैं? कि मुझे एक पतित पावन बाप को याद करो। वो कैसा है? पतित पावन, दो शब्दों का योग, दोनों का अर्थ क्या है? पतित मन, गिरा हुआ, और पावन मन, पवित्र, उठा हुआ। पतित मन दुर्गति, पावन मन सदगति। तो वो आता ही है पतितों को पावन बनाने के लिए। नियम है कि जो सबसे जास्ती पावन बनता है वही सबसे जास्ती पतित बनता है। तो किस रूप में आना पड़े? जरूर जो पतित है उसमें ही आते हैं और आकर के पतित को पावन बना, तो नाम पड़ा पतित पावन। आत्मा को ही पावन बनना है, ऐसे नहीं परमात्मा को पावन बनना है। आत्मा ही पतित बनी है, बच्चे जानते हैं भारत में ही बाप आकर के याद की यात्रा से चलाते हैं। और कहां भी सिखला नहीं सकते मन, कोई भी दूसरे खंड में याद की यात्रा नहीं सिखलाई जा सकती। क्यों? दूसरे धर्म खंडों ने क्या गुनाह किया? दूसरे धर्म खंड बीच में आए और बीच में ही खलास हो जाए। उन धर्म खंडों के जो मुखिया हैं, वो भी बीच में आते, बाकी शांति धाम में पड़े रहते। तो जो अनादि है, ऑलराउंड पार्टधारी है, उसमें ही आकर के याद की यात्रा दिखलाते हैं। और किसी ने नहीं दिखला सकते। जिसे मानी यात्रा है तो बच्चों ने बहुत की है। ये याद की यात्रा सिर्फ एक बात ही सिखला सकते है। वो है जिस्मानी यात्रा, जिस्म को यात्रा कराते हैं। रूह हमारा मन बुद्धि की लागत एक बात के साथ जुटे, ऐसी यात्रा नहीं सिखलाते। जिस्मानी यात्राओं में जिस्म को ही याद करेंगे और रूहानी यात्रा में रूह है मुख्य, लेकिन हमारा प्रवृत्ति मार्ग है। रूह अगर शरीर धारण न करे तो जैसे जड़वत हो जाती, तो भक्ति मार्ग में तो पहाड़ों से ले जाएंगे, बद्रीनाथ केदारनाथ अमरनाथ, वहां जाकर के जड़ चित्रों का दर्शन कराए देंगे। तथा कथित ब्राह्मण माउंट आबू में ले जाएंगे और जड़ चित्र में परमात्मा को याद करना सिखाएंगे, लेकिन वो है सब भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग क्या है? ज्ञान मार्ग में तो परमात्मा स्वयं प्रैक्टिकल आता है और आकर के राजयोग सिखाता है। वो राजयोग खुद प्रवृत्ति में रहकर सिखाया होगा या निवृत्ति में रहकर सिखाया होगा? निवृत्ति मार्ग वाले तो प्रवृत्ति मार्ग वालों को राजयोग सिखला ही नहीं सकते। जैसे वो मठ मंडलेश्वर बैठे हुए होते हैं उन संप्रदायों में, और वो कहते हैं हम राजयोग सिखलाते हैं, लेकिन राजयोग तो अर्जुन जैसे गृहस्थियों को सिखलाया गया था या निवृत्ति मार्ग वाले भीषण के काम आदि ने सीखा था? वो नहीं सीख सके। गृहस्थियों को भी प्रवृत्ति मार्ग वालों को भी राजयोग सिखलाया जाता है, और सिखलाने वाला स्वयं भी प्रवृत्ति मार्ग में होता है। ब्रह्मा और सरस्वती की प्रवृत्ति कहेंगे, वो तो उनकी बेटी थी। बाप और बेटी की प्रवृत्ति प्रवृत्ति नहीं होती, तो क्या ब्रह्मा के द्वारा राजयोग नहीं सिखलाया? राजयोग सिखलाया तो राजयोग का रिजल्ट आना चाहिए। राजयोग का रिजल्ट क्या है? राजयोग से क्या रिजल्ट आता है? राजा बनते हैं। तो राजा बने या आधीन बन गए? सब एक दूसरे के अधीन बने हुए हैं या राजा बने हुए हैं? और जो राजा बनने वाले होंगे, जिनमें वो संस्कार होंगे जन्म जन्मांतर के, वो किसी देहधारी के अधीन नहीं होंगे, एक परमात्मा की श्रीमत पर चलने वाले होंगे, एक निराकार बाप को पहचानने वाले होंगे। निराकार का मतलब ये नहीं कि शरीर छोड़ दिया ब्रह्मा का और निराकार हो गया बिंदु। निराकार का मतलब निराकारी स्टेज वाला, जैसे और धर्म के साथ निराकारी स्टेज में है, क्राइस्ट, बुद्ध, गुरु नानक, इनके चेहरे को ध्यान से देखने से पता लगता है तीन की निराकारी स्टेज। तो ऐसी निराकारी स्टेज वाला बाप निराकारी निर्विकारी निर्हंकारी दुनिया स्थापन करने वाला है। बताया कि सिर्फ भारत में ही आकर के राजयोग सिखलाते और कहीं भी नहीं सिखला सकते। अब तुम बच्चों को बाप ने समझाया, माया के कारण सबकी बुद्धि को बेसमझी का ताला लगा हुआ है। समझते हुए भी क्यों नहीं समझते? मुर्गियों ने तो बार बार आता है कि प्रवृत्ति मार्ग है, वालों को प्रवृत्ति मार्ग वाले ही राज्यों को सिखला सकते हैं, निवृत्ति मार्ग वाले राज्यों को नहीं सिखला सकते। ये काला बुद्धि को किसने लगाया जो रोज सुनते हुए भी नहीं समझते? माया बुद्धि को ताला लगाती है। अभी बाप द्वारा तुमको मालूम पड़ा है कि हम कितने समझदार और धनवान पवित्र थे। अब हमको फिर बनना है। हम सारे विश्व के मालिक थे, अब हम फिर बन रहे हैं। बाप की तो बड़ी बेहदी की बादशाही देते हैं, लौकिक बात करके लाख करोड़ देंगे। यहाँ तो मीठा बेहद का बाप बेहद की बादशाही देने आए। क्या कहा? तो बेहद की बादशाही लेने के लिए तुम यहाँ आए हो पढ़ने, इसके पास बेहद बाबा के पास। बाबा अक्षर मम्मा से भी मीठा है। क्यों मीठा लगता है? क्योंकि बाबा से वर्षा मिलता है, माँ से कोई वर्षा नहीं मिलता है, इसलिए मिठास लगता है। बल मम्मा पालना करती है, परंतु बाप फिर भी बाप है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद का वर्षा किससे मिलता है? बाप। तो ब्रह्मा का पार्ट क्या हुआ? ब्रह्मा ना बड़ी और माँ माना माँ, माना संसार की बड़े से बड़ी माँ, जिससे जास्ती प्यार दुनिया में कोई दे नहीं सकता, ऐसी पालना प्यार भरी कोई दे नहीं सकता। और मम्मा थी उसकी सहयोगी, पालना करने के कार्य में। तो एक छोटी मम्मा हुई और एक बड़ी मम्मा। तुम सदा सुखी और सदा सुहागिन बन रहे हो। बाबा हमको फिर से क्या से क्या बनाते? ये कोई नई बात नहीं है। गैंग भी है, सुबह को अमीर था और रात को फकीर था। सुबह मन और रात मन सुबह माना सतयुग और रात माना कलयुग। तुम बनते हो फुल बैगर टू फुल प्रेम। जब तक फुल बैगर नहीं बने हैं तब तक फुल प्रिंस भी नहीं बन सकते। तुम भी सुबह में अमीर और फिर बेहद रात में फकीर बन जाते हो। बाबा रोज रोज स्मृति दिलाते हैं, बच्चे कल तो तुम विश्व के मालिक थे, आज तुम फकीर बन पड़े। किसे कहते हैं है? विश्व के मालिक कौन है? लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे और आज फकीर बन पड़े। तो लक्ष्मी नारायण को विश्व का मालिक के रूप में दिखाते हैं मालकाना, और फकीर कौन सा रूप दिखाया जाता है? है? फकीर का रूप कौन सा दिखाया जाता है? नहीं याद रहा है? शंकर को फकीर के रूप में दिखाते हैं ना, कुछ है उसके पास दुनियावी तरीके से, कुछ नहीं दिखाते हैं
कपड़े।
हाँ, कांटों के जंगल में आज तुम फकीर बन पड़े हो। अब फिर सुबह आती कहां तो नारायण को इतना ताम झाम विष्णु को, और कहां शंकर को हर कपड़े भी नहीं। तो आप फिर सुबह आती हो तो तुम अमीर बन जाते हो। कितनी सहज बात है, तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। क्या खुशी होनी चाहिए है? फकीर बनने की खुशी होनी चाहिए? फकीर बनने की खुशी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फकीर से अब हम अमीर बनते हैं ये खुशी होनी चाहिए। अमीर बनने की ब्राह्मणों का दिन और ब्राह्मणों की रात, अब दिन में तुम अमीर बन रहे और बनेंगे भी जरूर, परंतु नंबर वार पुरुषार्थम का बाप कहते हैं ये वो खारी चैनल है जिसे तुम ही पार करते हो युग बल से। खारी चैनल कहाँ है? ब्रिटेन में जब जाते हैं तो यूरोप और ब्रिटेन के बीच में जो समुद्र पड़ता है उसका नाम खारी चैनल रखा है। ब्रिटेन की राजधानी कौन सी है? लंदन। तो लंदन तक जाने के लिए खारी चैनल से पार करना पड़ता है, तब पूरा लेन देन हो सकता है। काहे का लेन देन? कोई स्थूल धन संपत्ति का लेन देन नहीं, परमात्मा बाप से राजयोग की पढ़ाई करने के लिए ज्ञान का लेन देन। तो उस खारी चैनल को तुम ही पार करते हो। खारी क्यों बताया? कृष्ण ने भी पार किया था क्या? क्या पार किया था? यमुना नदी पार की थी। यमुना नदी और गंगा नदी में क्या फर्क दिखाते हैं? यमुना का पानी काला हो जाता है, उसमें बड़े बड़े जीव जंतु रहते हैं, क्योंकि मिट्टी चिकनी होती है, चिपकने वाली है। मिट्टी माना दो अभिमान की मिट्टी के पकने वाली होती है और गंगा की मिट्टी चिपकने वाली नहीं होती है। लगाव नहीं लग सकता। तो खारी चंदन मन यमुना नदी में खारापन क्या है यार गंगा के मुकाबले? यमुना नदी में अनेक प्रकार के नाले पड़ते हैं और दिल्ली जैसे पहले शहर में आते आते पूरी गंदी हो जाती है। गंगा में गंगा में भी नाले पड़ते हैं लेकिन गंगा की मिट्टी कैसी है? रेतीली। पानी को जब शुद्ध करते हैं तो एक प्रक्रिया दिखाते हैं, चूने का घड़ा, कोयले का घड़ा और रेत का घड़ा। तीन घड़ों से जब पानी गुजरता है तो साफ हो जाता है। तो रेत भी पानी को शुद्ध करने वाला है। दे अभिमान तो आज की दुनिया में सब में है लेकिन कोई में दे अभिमान ऐसा है कि लगाव नहीं लगता। बुद्धि का लगाव एक तरफ लगा हुआ है क्योंकि गंगा को कहां पे काबासी दिखाते हैं। गंगा कहां बैठी हुई है? जटाऊं। तो जो मस्तक में ही रहने वाली है और मस्तक में तो चंद्रमा भी है, ज्ञान सूर्य तीसरा नेत्र भी है तो जरूर है। जब तक वो मस्तक में है ऊंची स्टेज में तब तक तो पवित्र ही रहती और फिर जब नीचे उतरती है तो भी पवित्र रहती है। सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी बहुत कुछ पवित्र है और कलयुग के अंत में आकर के सबको नीचे गिरना है तो गंगा भी नीचे गिरती है। जब बड़े बड़े कल कारखाने शुरू होते हैं और उन कल कारखानों का जो कचरा है वो गंगा में जाकर के मिल जाता है तो खारी चैनल माना नमकीन। क्या जैसे फरुखाबादी नमकीन बहुत प्रसिद्ध है, गंगा पहले पहले कहां से प्रदूषण लेती है? अभी तो हरिद्वार में ही प्रदूषण शुरू हो गया तो हरिद्वार का बहुत ज्यादा विस्तार हो गया लेकिन पहले 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 ऐसा नहीं था। हर फल आदमी आकर के पहले पहले जो नाला था गिरता था तो नाले का पानी कैसा होगा? खारा होगा या मीठा होगा? मलमूत्र जहां होगा तो उसमें नाले में तो मलमूत्र होता है तो खारापन होता है। तो खारेपन का मतलब क्या और मीठेपन का मतलब क्या? आत्मा जितनी पावन होगी उतना ही उसमें मिठास होगा। दृष्टि में, वृत्ति में, वाचा में मिठास होगी और आत्मा जितनी ही खारी होगी विषैली होगी उतना ही मीठापन नहीं होगा। कैसा होगा? कड़ुआपन। तो खारी चंदन से तुम बच्चे पार करते हो। ये विषय वैतरण नदी जैसे कृष्ण को दिखाते हैं तो तुम बच्चे भी खारी चंदन से पार करते हो। पार तो कर नहीं या डूब मर रहे हैं? बोलते है कि नहीं हम पार ही क्यों करें, हम तो पवित्र ही बने रहेंगे हैं? हमें खारी चैनल पार करने की क्या जरूरत? हमको घर घर से कीकर में फंसने की क्या जरूरत? तो पार करना पड़े या दूरवाद कुशवाद होकर के पास हो जाएंगे है? पास करना पड़ेगा। सीता को भी क्या करना पड़ा? अग्नि परीक्षा से पार होना पड़ा, नहीं तो संसार कैसे जानेगा कि ये पवित्र है और हम अपवित्र हैं? कोई परीक्षा तो होगी, परीक्षा हुए बगैर कभी कोई पास पास नहीं हो सकता, ऊंच पद नहीं पा सकता। तो तुम खारी चैनल पार करते हो और तुम ही पार करते हो योग बल से। क्या शरीर है हमारी नवैया और बाप है सिवैया और आत्मा है बिठैया, तो घबराने की दरकार है कि हम नैया को मझधार में नहीं जाने देंगे? घबराना चाहिए, क्यों क्यों नहीं घबराना चाहिए? 63 जन्म तो हम गोते खाते आए, अब क्यों नहीं घबराएंगे? 63 जन्म हमको देहधारी गुरु मिले थे और अब हमको ऐसा बाप खिवैया मिला हुआ है कि जो हमको पार ले ही जाएगा। गारंटी करते हैं कि मैं तुम बच्चों को पार ले जाऊंगा, पार ले जाऊंगा। तो जहां जाना है उनकी याद रहनी चाहिए। कहां जाना है, कौन से धाम में जाना है? परम धाम में जाना है। तो परम धाम पवित्र है या अपवित्र है? तो पवित्र धाम है, बाप का घर तो जरूर पवित्र होना चाहिए। मधुबनी की भूमि को हम पवित्र कहें या अपवित्र कहें? मधुबनी किसे कहा जाता है? जहाँ मधुसूदन बाप है वही बाप का घर है, माने वही हमारे लिए साकार शक्ति पर परम धाम है। तो पवित्र धाम हुआ ना, दुनिया के मुकाबले तो बहुत ही पवित्र। ऐसे नहीं कि मधुबनी में माया नहीं आती, माया तो आती है, लेकिन माया के आने के बावजूद भी मधुबन धाम है पवित्र धाम, क्योंकि बाप का रहवास है। तो बाप जहाँ है, बाप माने कौन? सुप्रीम सोल, ब्रह्मा की सोल नहीं, सुप्रीम सोल जहाँ है साकार में, प्रैक्टिकल में, चैतन्य में, तो वो मधुबन हुआ। इसलिए अगस्तवाणी ने बताया, जहाँ जहाँ मधुबन भूमि मधुबन बना देंगे वहाँ वहाँ बाप दादा आ जाएंगे। तो जहाँ जाना होता है उनकी याद रहनी चाहिए। आखिर हमको जाना कहाँ है? आखिरी गंतव्य हमारा कौन सा है? बाप के पास जाना है। तो जब बाप के पास जाना है तो याद भी किसकी रहेगी? बाप की याद रहेगी। हमको अब घर जाना है, बाबा खुद आया हुआ है हमको ले जाने के लिए। कहाँ आया हुआ है? ये मधुबन धाम भी कहाँ है? फरुखाबाद, फरुखाबाद में तो मिनी मधुबन हो सकता है। जो ब्राड मधुबन है वो तो नहीं। फिर जाना कहाँ है? ब्राड में जाना है या मिनी मधुबन में जाना है? ब्राड में जाना है। ब्राड कहाँ है? है? ब्राड कहाँ है? आबू में, लेकिन वहां शिव बाबा है, है? हाँ, तो अभी तो नहीं है। अभी तो जहाँ बाबा है वहाँ मधुबन है, और जहाँ बाबा नहीं वहाँ मधुबन नहीं। लेकिन जाना कहाँ है आखिर? ब्राट मधुबन, तो जरूर बाबा भी जाएगा जरूर। तो बहुत प्यार से समझाते हैं कि बाबा अभी खुद आया हुआ है तो वैसे वैसे नदी से हमको पार ले जाने के लिए। नीचे बच्चे तुम ही पावन थे, 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो। कौन पतित बने?
जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं, पूरा ऑलराउंड पार्ट बजाया, उन्होंने 84 जन्म लिए। बाकी जिन्होंने 83 जन्म लिए, 82 लिए या और कम लिए, उन्होंने तो पूरा ऑलराउंड चक्कर नहीं लगाया। क्यों? उन्होंने कम जन्म क्यों लिए? क्योंकि दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वालों के जन्म कम हो जाते। जो एक बात से ही पढ़ाई पढ़ने वाले हैं, अनेक जन्मों में एक बाप का ही संग जिनको रहा है, वो आत्माएं कहीं दूसरी जगह भटकने वाली नहीं हो सकती। तो तुम ही पावन थे। कौन तुम? जो 84 जन्म लेते लेते पतित बने। पावन बनने का और कोई उपाय नहीं। क्या? कौन सा उपाय बताया? एक बाप, दूसरा न कोई। और जिन्होंने दूसरा अपना बना लिया गुरु, उनके जन्म कब हो गए? जिन्होंने एक बात को पकड़ा, अभी भी चैन याद को पकड़ा, मान एकम याद करो, वो आत्मा भटकने वाली नहीं हो सकती। तुम जानते हो पतित पावन आते हैं और तुम उनकी मत पर चल पावन बनते हो। ऐसे नहीं आते हैं और चले जाते हैं पढ़ाई पढ़ा के, फिर हम उनकी मत पर चलते रहते हैं फिर पावन बन जाते। नहीं, ऐसे कहीं नहीं कहा मुरली ने कि मैं आकर के पढ़ाई पढ़ा के चला जाता हूँ फिर तुम पतित से पावन बनते रहते हो। नहीं, बाप का भूल उद्देश्य क्या है? पढ़ाई पढ़ाना या पतितों को पावन बनाना? हम बुलाते भी हैं तो क्या कहते हैं? हे पतित पावन आओ, आकर ज्ञान सुनाओ और चले जाओ। भक्ति मार्ग में क्या कहा? एक पति का
22 नंबर के रजिस्टर में 22/4/88 का प्रातः क्लास पहले पेज का मध्यान। तो तुम बच्चे जानते हो पति का पावन बाप आते हैं और तुम उनकी मत पर चलकर पावन बनते हो। आते हैं तब उनकी मत पर चलकर पावन बनते हो। इसका मतलब और किसी जगह में तो आते ही नहीं है, और जब आते ही नहीं है तो उनकी मत पर चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। संग दिन में ही आते हैं, और संग दिन में ही जब प्रैक्टिकल आते हैं साकार संग में, तब हम उनकी मत पर चलते हैं फिर पावन बनते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होती है कि हम यह पद पाएंगे। क्यों? तुम बच्चों को ही क्यों? जो सन्मुख बैठे उनको ही तो तुम कहा जाएगा। उन सन्मुख बैठने वाले बच्चों को ही खुशी क्यों होती? दूसरों को खुशी नहीं होगी? जो परमात्मा बाप की वाणी पढ़ लेते हैं या कई प्रकार से सुन लेते हैं उनको खुशी नहीं होती है? नंबर वन खुशी होती। क्यों? सन्मुख वालों के लिए तुम कहा जाता है, जो सन्मुख न हो उनको भी तुम कहा जाता है क्या? हाँ, बाबा इमर्ज करके बच्चों से बात करते हैं कभी। क्या? कुछ बच्चों को इमर्ज करके भी बात करते हैं। तो इमर्ज करके बात करते हैं इसका मतलब जरूर वो बच्चे सन्मुख हुए हैं कभी, तो इमर्ज करके भी बात की जाती। जैसे माँ है और बच्चे का प्रैक्टिकल संबंध है, हुआ है, तो माँ अगर पड़े पड़े याद भी कर रही है बच्चे को, तो कभी कभी बच्चे को सामने रखकर के उससे बात करती, रूढ़िवान करती, तो उस समय बच्चे को इमर्ज कर लिया ना। तो बच्चा हुआ है प्रैक्टिकल में, तब तो इमर्ज किया ना। तो ऐसे ही बाप भी कुछ विशेष बच्चे हैं जो सन्मुख नहीं भी होते हैं तो भी उनको इमर्ज करते हैं, और इमर्ज करके फिर वाणी चलाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होती है। कि हम यह पद पाएंगे। कौन सा पद? यह जब कहा तो किस तरह इशारा किया? लक्ष्मी नारायण की कृपा की तरह। तो जिस समय ये मुरली बोली गई है उस समय लक्ष्मी नारायण का पद पाने वाले क्या बाबा के सामने मौजूद थे? नहीं थे। तो जरूर बाबा ने उस समय उन बच्चों को इमर्ज करके बाणी चलाई। उस समय मौजूद नहीं थे लेकिन पूर्व जन्म में वो बच्चे जरूर बाबा के सम्मुख थे। बाप कहते हैं तुम 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनेगी। क्या कहा? ऐसे नहीं 20 जन्मों के लिए या और कम जन्मों के लिए, तुम 21 जन्मों के लिए सदा सुखी। 21 जन्मों में भी सदा शब्द लगा दिया। सदा का मतलब क्या हुआ? 21 जन्मों में भी एक दो दिन चार दिन कम नहीं, तुम्हारा सुख का राउंड कम नहीं होगा, सदा सुखी बनेंगे। बाप सुखधाम का और रावण सुखधाम का वर्त देते। कैसे? बाप श्रीमत देकर सुखधाम का वर्षा देते हैं। श्रीमत के सदगति माना सुख, और रावण दुखदान का वर्षा कैसे देते हैं? मन मत, मनुष्य मत, गुरु मत सुना करके दुखदान का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे अभी जानते हो रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है। कितना पुराना? 5000 वर्ष पुराना, 2500 वर्ष पुराना। जिसने तुमको अपने 5 विकारों रूपी पिंजरे में डाला है, बाप आकर निकालते हैं। जितना जो बाप को याद करते हैं उतना औरों को भी परिचय देते हैं। याद न करने वाले देह अभिमान में होंगे, वो न बाप को याद करते हैं और न बाप का परिचय दूसरों को दे सकते हैं। हम आत्मा भाई भाई हैं, घर से यहाँ आए हैं भिन्न भिन्न पार्ट बजाने के लिए। सारा पार्ट कैसे बजता है ये भी तुम्हारी बुद्धि है। जिनको पक्का निश्चय है वो आकर के यहाँ रिफ्रेश होते हैं। क्या कहा? कच्चे निश्चय वाले यहाँ आकर के बार बार रेफरेंस नहीं होंगे। कौन रेफरेंस होंगे? जिनको पक्का निश्चय होगा। ये कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है जो तुमको टीचर के साथ ही रहना हो। क्या ये कोई जरूरी नहीं है कि तुम टीचर के साथ ही रहो? लेकिन जरूरी क्या है? रेफरेंस होने के लिए वो तू कम चूल। अपने घर में रहते भी पढ़ाई कर सकते हो। किसके घर में? किसके घर में रहते पढ़ाई कर सकते हो? पराए घर में नहीं बताया, कहाँ बताया? अपने घर में रहकर भी पढ़ाई कर सकते हो। सिर्फ एक हफ्ता अच्छी तरह समझो, फिर ब्राह्मणिया कोई को 1 मास में, कोई को 6 मास में, कोई को 12 मास के बाद ले आती है। बाबा कहते हैं निश्चय हुआ और भागा। निश्चय की निशानी क्या होगी? उसको नशा कर जाएगा कि हमको बेहद का बाप मिल गया, फिर वो 1 सेकंड भी रुक नहीं सकता। परंतु ये समझना है, प्रतिज्ञा भी करते हैं, राखी भी बांधनी है कि हम विकार में नहीं जाएंगे। बच्चों तुमको निर्विकारी जरूर बनना। क्या कहा? विकारी तुमको नहीं लेकिन निर्विकारी जरूर बनना है। इसलिए अगर बाप के घर में जाना है तो निर्विकारी जरूर बनना है। सुखधाम और शांति धाम में जाना है तो निर्विकारी जरूर बनना पड़े। इस दुनिया में रह करके तो सुखदाव शांति धाम नहीं जाएंगे ना, कि जा सकते यदि के आदमी क्या ऐसा टेम्पल बना के नहीं दिखाया इस नरक की दुनिया के बीच ही स्वर्ग का टेम्पल बनाया हो। कराची में चारों तरफ खून की नदियां बह रही थी और जिस बंगले में बाबा ठहरे हुए थे बच्चों के साथ वहां पूरी सुख शांति लगी पड़ी कि वहां भी कोई आक्रमण हुआ नहीं, पता भी नहीं चला उनको। तो अगर विकार में गए दूसरा दूर तो की कमाई कट हो जाएगी और सौ गुना दंड चढ़ जाएगा। तेसठ जन्म तुमने गोते खाए हैं, अब कहते हैं पवित्र बनो, मेरे को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। आत्मा भाई भाई है, इसके नाम रूप में फंसना नहीं है। अगर कोई रेगुलर नहीं पढ़ता है तो जल्दी में नहीं ले आना चाहिए। क्या कहा, इसको ले आना चाहिए जो पढ़ाई में रेगुलर है उनको ले आना चाहिए। रेगुलर नहीं होगा तो उनको इतनी कदर नहीं है बाबा की पढ़ाई की, और जब बाबा की पढ़ाई की कदर नहीं है तो बाबा को पहचानना भी मुश्किल होगा। तो जल्दी में नहीं ले आना चाहिए। भले बाबा कहते हैं एक दिन में भी तीर लग सकता है कोई को, परंतु समझ से भी काम लेना। तुम ब्राह्मण हो सबसे उत्तम, ये तुम्हारा बहुत ऊंचा कुल है। वहां कोई सत्संग आदि नहीं होता, कहां सत्युग सत्संग भक्ति मार्ग में होता है। तुम जानते हो सत्य का संग तारे, सत्य कौन इस दुनिया में सत्य तो कोई है ही नहीं, एक बाप आया हुआ है वही सत्य है और बाकी सब सब झूठ। तो किसका संग लेना है? जो सत्य है उसी का संग लेना। तुम संग तुम संग खाऊं तुम संग बोलूं, सत्य का संग मिलता ही तब है जब सत्यु की स्थापना होनी होगी। ये किसी बुद्धि में नहीं आता है क्योंकि बुद्धि को ताला लगा हुआ है। अब सत्यु को जाना है, सत्य का संग मिलता ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। देखो संगम युग नहीं बताया कब, पुरुषोत्तम संगम युग पर, पुरुष माना आत्मा, उत्तम माना श्रेष्ठ। जब श्रेष्ठ आत्माओं की प्रत्यक्षता होती है संसार में तो उस संगम युग पर जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं तब उसे सत्य का संग मिलता है। वो गुरु लोग तो संगम युग है ही नहीं, क्यों नहीं है संगम युग? पुरुषोत्तम संगम युग कहाँ होता है? वो गुरु लोग तो अपने अखाड़ों में रहते हैं, मठों में रहते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग कहाँ होता है? पुरुषोत्तम संगम युग होता है मधुबन में। मधुबन के सिवाय कहीं भी पुरुषोत्तम संगम युग नहीं होता। तो वो गुरु लोग संगम युग नहीं है। बाबा जब आते हैं तो बेटा बेटा कह के बुलाते हैं। उन गुरु लोगों को तुम बाबा थोड़े कहेंगे, कहेंगे
है? उन गुरु लोगों को बाबा कहेंगे, दादी भले कहें, दादा भले कहें, लेकिन बाबा बाबा नहीं कहेंगे। तो जहां तुम जाकर के बाबा कहेंगे, वहां हुआ पुरुषोत्तम संग मिले। तो देखो कैसा एक दम बुद्धि को वर्णिज का ताला लगा हुआ है। कौन सी रेंज का गॉड रेंज? गॉड अच्छी चीज है या खराब चीज है? गॉड की रेंज तो अच्छी होती है या खराब होती है?
ताला तो है, बंद है।
ताला है, बंद है, लेकिन गॉड की रेंज है ना, गॉड की किरणें। तो गॉड की जो किरणें हैं वो ताला खोलने वाली होगी या उनसे बंद हो जाएगा? गॉड रेंज का ताला, गॉड रेंज का ताला और कहीं होता ही नहीं है। ये सिर्फ ब्राह्मणों की संगम की दुनिया के लिए ही बात है कि गॉड की रेजिस तो मिली हुई है। परमात्मा का ज्ञान तो रोज सुनते हैं, मुरली में पढ़ते हैं, लेकिन बुद्धि को फिर भी ताला लगा हुआ है। ताला लगाने वाली कौन है? माया। बाप आकर के ताला खोलते हैं और माया बुद्धि का ताला उन्हीं रेजिस से बंद कर देती। रेजिस वही है, ज्ञान वही है। एक ज्ञान अज्ञान हो जाता है, बुद्धि का ताला बंद, और एक ज्ञान बुद्धि का ताला खोल देता है। तो बुद्धि का ताला खुलता कहाँ है और बंद कहाँ होता है? पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप के सन्मुख जब आते हैं तो बुद्धि का ताला खुल जाता है, और देहधारी गुरुओं के सन्मुख जब होकर बैठते हैं, परमात्मा बाप से विपरीत बुद्धि हो जाते हैं, विमुख हो जाते हैं, तो ताला बंद हो जाता है। बाबा आकर के ताला खोलता है, क्या था? ऐसे नहीं आकर के और चले जाते हैं फिर ताला। कोई देहधारी धर्मगुरु खोलते रहते हैं, वो क्या करेंगे? चले जाते हैं तब देहधारी गुरु क्या करेंगे? ताला बंद करेंगे या खोलेंगे? वो तो और ही ताला बंद कर देते। तो बाबा आकर के ताला खोलते हैं। बाबा देखो कितनी युक्ति रखते हैं कि मनुष्य आकर के ही जैसा जीवन बनाए। कहाँ आकर के? पुरुषोत्तम संग देव पर बाबा के सन्मुख आकर हीरे जैसा जीवन बना है। हीरा क्या करता है? चमक मारता है, रोशनी देता है। तो बाबा के पास जो बच्चे आएंगे उनके अंदर ज्ञान की रोशनी आ जाएगी, वो चमकेंगे, उनकी आत्मा ज्ञान की रोशनी से चमक वाली बन जाएगी। और गुरुओं के पास जाने से क्या होता है? जीवन कैसा बनता है? कौड़ी जैसा बनता है। कौड़ी ही अगर बुद्धि में याद रहे, कौड़ी का शेप कैसा होता है? अगर 24 घंटे को देहबानी भी बुद्धि में लगा रहे तो हालत क्या होगी? गड्ढे में जाएंगे या सदगति होगी? गड्ढे में दुर्गति हुई, पतित बने। ऐसे नहीं है कि शरीर से ही पतित हुआ जाता है। सन्यासी शरीर से तो पति तो पावन बनते हैं, घरवास छोड़ देते हैं, लेकिन बुद्धि बुद्धि फिर भी पति तो बनती रहती। मन को कंट्रोल नहीं कर सकते तो पति तो बनेंगे कि पावन बनेंगे? और ही पति होते जाते। तो बाप आकर के हीरे जैसा जीवन बनाते हैं और देहधारी गुरु कौड़ जैसा जीवन बनाते हैं। माने बाबा जब आते हैं तो बुद्धि का ताला खुल जाता है और उसमें ज्ञान का मन चिंतन मंथन चल पड़ता है, आत्मा में रोशनी आ जाती है हीरे जैसी। और गुरु बुद्धि का ताला बंद कर देते हैं तो जो ज्ञान का मन चिंतन मंथन चलना होता है वो बंद हो जाता है। गुरु लोग ये नहीं कहेंगे मन चिंतन मंथन करो ज्ञान का, वो क्या कह देते? ज्यादा गहराई में जाने के डूब मरोगे। और हम निकाल नहीं पाएंगे फिर तुम, क्योंकि हमको भी ज्यादा गहराई में जाना पड़ेगा, तो हमें भी गहरा चाहिए, हमें हम भी तो डूब मरे। तो बाबा देखो कितनी युक्ति रखते हैं, मैगजीन किताब आदि छपाते रहते हैं। बहुतों का कल्याण हो तो बहुतों का आशीर्वाद मिले, प्रजा बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। दादा प्रजा बनाने का भी पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि जब हम राजा बनेंगे तो प्रजा तो होगी। हाँ उनमें से कोई कोई वारसदार भी निकल आऊंगी। अपने को बंधन से छुड़ाना चाहिए। क्या कहा? किसके बंधन से? है देह और देहधारियों के बंधन से छुड़ाना चाहिए, चाहे लौकिक बंधन हो और चाहे अलौकिक ब्राह्मणों की दुनिया के बंधन हो। बंधन तो बंधन ही है, वो तो जंजीर है, उसे मुक्ति स्टेज नहीं कहा जा सकता है। तो अपने को निर्बंधन बनाना चाहिए या बंधन में बांधना चाहिए, कभी निर्वाह सर्विस तो जरूर करनी। क्या था ऐसे नहीं कि सर्विस करना छोड़ दें। लौकिक सर्विस की बात नहीं बताई कि देखो बाबा ने कहा है सर्विस जरूर करना, कभी निर्वाह तो कन्याओं को भी उन्होंने क्या किया, कन्याओं को भी लौकिक सर्विस में लगवाई दिया। बाबा का मतलब ये नहीं है, बाबा का मतलब है लौकिक सर्विस नहीं अलौकिक सर्विस। अलौकिक सर्विस करेंगे तो शरीर निर्वाह भी होगा, ऐसे नहीं कि लौकिक सर्विस करने से ही शरीर निर्वाह होता है। अलौकिक सर्विस करने से भी शरीर निर्वाह होगा। ये ईश्वरीय सर्विस होती है सिर्फ सुबह और शाम को। कौन सी सर्विस की तरफ बात बताई, ईश्वरी सर्विस की बात बताई या आधुनिक सर्विस की बात बताई? शरीर निर्वाह के लिए भी कौन सी सर्विस, ईश्वरीय सेवा सुबह और शाम करो। उस समय सबको फुर्सत होती है, जिसके साथ तुम लौकिक सर्विस करते हो उनको भी पर्चे देते हो कि तुमको दो बात है। लौकिक बात सबका अलग है, पारमार्थिक बात सबका एक है, वो सुखनी नहीं। बाबा कहते हैं मेरा भी पार्ट है। अब तुम बच्चे मेरा परिचय जान गए, ऐसा नहीं कि मेरा पार्ट नहीं है, मैं कोई पार्टदारी नहीं हूँ, मेरा भी पार्ट है। और तुम बच्चे मेरा परिचय जान गए हो, आत्मा को भी तुम जान गए। और आत्मा के लिए कहते हैं प्रकृति कितनी की चमकता है जब सितारे, वो अकाल शक्ति भी। आत्मा को कभी काल नहीं खाता, वो सिर्फ मैली और साफ होती है। आत्मा का तत्व सोता ही प्रकृति के बीच में। तिलक की निशानी भी यहाँ देते हैं, बाप कहते हैं तुम अपने को आते ही रोज तिलक देने लायक बनाओ। क्या उन्होंने तिलक दिया तुलसीदास चंदन जीतन तिलक देख रघुवीर, तो रघुवीर ने तिलक लगाया या तुलसीदास ने अपने पुरुषार्थ से तिलक देने योग्य बने? तुलसीदास आज से 500 साल पहले हुए, वहां तो कोई तिलक दुख की बादशाही का मिलता नहीं, आत्मिक स्मृति का भी तिलक नहीं मिलता, तो बात कहाँ की है? बात यहाँ संगत की शूटिंग पीरियड की है कि तुम जितना ही मनन चिंतन मंथन में रहोगे उतना तुमको विश्व की बादशाही का तिलक लगेगा। आत्मा ही विनोदी बनेगी, ऐसे नहीं कि मैं सबको राज तिलक दूंगा फिर तो मैं 500 करोड़ को राज तिलक दे दू, कोई हिसाब होगा ना, जो करेगा तो पाएगा। तुम अपने को दिलाओ तिलक। बाबा जानते हैं कौन बहुत तंग करते हैं, किताब मैगजीन में भी लिखत बहुत अच्छी आती है, साथ साथ योग की मेहनत भी करनी है जिससे निकल भी ना सू, दिन प्रतिदिन तुम अच्छे राजयोगी बन जाएंगे। समझेंगे जैसे कि अब शरीर छूटता जाता है, क्या मतलब हाँ देहभान से हम परे होते जाएंगे। शरीर छूटने का मतलब ये नहीं है कि जैसे ब्रह्मा और सरस्वती ने शरीर छोड़ दिया, वैसे हम बच्चों को भी बाबा ने ये लक्ष्य दिया है कि तुम भी अपना शरीर छोड़ करके चले जाओ। नहीं, शरीर छोड़ना माने मरना, जीते भी मरना हमको सिखाया है, बाकी शरीर छोड़ करके मरने की बात नहीं है। तो हम चले जाते सूक्ष्म वतन तक तो बच्चे जाते हैं, मूल वतन को भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम आत्माओं का घर है, हम इसी शांति धाम के लिए ही भक्ति करते हैं। सुखधाम का तो उनको मालूम ही नहीं है, स्वर्ग में जाने की शिक्षा तो कोई दे ही नहीं सकते। के बाद बात की क्या कहा, दुनिया वाले क्या कहेंगे, दुनिया वाले गुरु कहेंगे कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिल सकता, शरीर छोड़ो तो स्वर्ग मिले। और बात क्या सिखाते हैं कि जी से जी मर जाओ, शरीर छोड़ने की बात नहीं है, तो तुम इसी दुनिया में अपने को स्वर्ग की स्टेज में महसूस करने लग पड़ेंगे। तुम दुख नहीं लेंगे, न दुख देंगे न दुख लेंगे, तुम खुद भी सुख में रहेंगे और दूसरों को भी मन से वचन से कर्म से दृष्टि से वृत्ति से सुख ही बांटेंगे, दुख नहीं बांटेंगे। तो ये है प्रवृत्ति मार्ग। क्या कहा, कौन सा प्रवृत्ति मार्ग है, स्वर्ग में जाने की शिक्षा तो कोई दे नहीं सकते सिवाय बाप के, ये बाप का है प्रवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग में रह करके बाप ने राज्यों को सिखाया है। माना तथाकथित ब्राह्मणों की ये गलत फहमी है क्या कि बाबा ने हमको राज्यों को सिखाया है ब्रह्मा के तन द्वारा। ब्रह्मा के तन द्वारा कोई राजयोग नहीं सिखाया, पढ़ाई तो पढ़ाई लेकिन राजयोग राजयोग नहीं सिखाया। पढ़ाई भी बेसिक नॉलेज दी, बेसिक नॉलेज छोटे छोटे बच्चों को बेसिक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया जाता है, वहां राजयोग की बात नहीं है जिसमें राज भरा हुआ हो। छोटे बच्चे राज को समझेंगे क्या, ये तो बड़े बच्चे हो जाते हैं तो अनेक प्रकार के संबंधों के राज को समझते हैं। योग माना संबंध है, बुद्धि का लगन लगाओ, तो ये प्रवृत्ति मार्ग है। दोनों को मुक्ति धाम में जाना है, वो लोग उनका रास्ता बताते क्या, वो लोग माना कौन, वो गुरु लोग उनका रास्ता बताते हैं और जाता कोई भी नहीं, सभी को पिछाड़ी में बाप के पास जाए ले जाना है, ये उनकी ड्यूटी है। मैंने बाप पिछाड़ी में सभी को ले जाएंगे, ये उनकी ड्यूटी है। कहाँ है ड्यूटी, ये ड्यूटी साकार वतन में है या सूक्ष्म वतन और मूल वतन में ड्यूटी लगी हुई है। कोई अच्छी से पढ़ करके राज भाग ले लेते, बाकी सब कैसे पढ़ेंगे क्या राज, वो जैसे नंबर वार आते हैं वैसे ही नंबर वार जाएंगे। इन बातों में जाते समय व्यस्त मत करो, कैसे हो बाबा को याद करने की भी फुर्सत नहीं मिलती है। फिर इसमें समय व्यस्त क्यों करते हो, ज्यादा बातों में पढ़ने की मेहनत उद्योग लगाने की क्यों मेहनत करते हो, ये तो निश्चय है कि देह का बात टीचर भी है गुरु भी है, फिर दूसरे कोई को याद करने की जरूरत ही नहीं है। एक निश्चय पैदा करना है कि वो हमारा बाप एक ही है, दो रूप नहीं है उसके, वो एक ही रूप है जो बाप भी है वर्षा देने वाला, टीचर भी है क्लैरिफिकेशन देने वाला। एक एक महावाचिका टीचर क्या करता है, जो गद्य और पद्य होती है उसको क्लियर करता है, तो वो टीचर भी है और वो एक हमारा गुरु भी है, गुरु का सदगति करने वाला। तो दूसरे कोई को याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, तुम पावन बन नहीं सकेंगे अगर दूसरे को याद करेंगे।
जानते हो कल पहले भी पावन बने थे, श्री मत पर चलते थे। घड़ी घड़ी चक्कर भी फिराते रहो, तुम्हारा नाम है सुदर्शन चक्रधारी। रहस्य का विशाल भी देती, रहस्य में बाल्टी लगी हुई होती है, नंबर वार बाल्टियां जाती है, नंबर वार खाली होती है, फिर जाकर के भरती। तो ज्ञान सागर से तुम्हें भरने में देरी नहीं लगती है क्या? बाल्टियों के वास्ते तो तुम भी ज्ञान सागर से जाकर भरते हो, गहराई में जाकर, खाली होने में देरी लगती है। पर उस फील्ड में जाएंगे तो धीरे धीरे संघ का रंग बदल जाएगा। तो जब संघ का रंग बदलेगा तो खाली भी बुद्ध रूपी बाल्टी खाली भी होगी, तो क्या करो फिर? बस रेफ्रेश होने के लिए आते हो तो वो नीचे नीचे सिकीम से बचे, क्योंकि कल्प के बाद आसक्ति मिलती है क्या? तो बाप से बिछड़े हुए कब से हो? सुप्रीम सोल रूहानी बाप से तुम एक कल्प से बिछड़े हुए, अब आसक्ति मिले ये पक्का निश्चय चाहिए। हम 84 जन्मों के बाद फिर से आकर के बाप से मिले, कितने जन्मों के बाद? 84 जन्म लेने के बाद आकर के बाप से मिले। बाप कहते हैं जितने पहले भक्ति किए वो ही पहले ज्ञान लेने के लायक भी बनती है। जिन्होंने पहली पहली अंधविचारी भक्ति नहीं की, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए, कोई इस्लाम धर्म में गए देवताएं देवात्माएं, कोई बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गई, कोई क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो गई, उसकी श्रुति भी कहाँ होती? यहाँ संगम पर श्रुति होती। बाप आकर पढ़ाई पढ़ाते हैं और दूसरे दूसरे देवधारी धर्मगुरुओं से उनका देह लगाओ लगाओ लग जाता, बाप की पढ़ाई छोड़ देते। तो 84 जन्मों के बाद बाप से आकर मिले हो। बात कहते हैं जिसने पहले पहले भक्ति की है वो ही पहले ज्ञान लेने के लायक भक्ति, क्योंकि भक्ति का फल चाहिए। भक्ति का फल क्या है? भक्ति से कौन मिलता है? ज्ञान तो बाद में मिलता है, पहले बाप मिलता है, भगवान मिलता है। भक्ति से क्या मिलता है? भगवान मिलता है, और भगवान से ज्ञान मिलता है। तो भक्ति का फल किसको मिले? पहले किसको मिलता है? जिन्होंने पहले पहले अर्धविचारी भक्ति की है वो ही अर्धविचारी ज्ञान भी लेते हैं बाप के आगे। तो सदैव अपने फल अथवा वर्ष को याद करते रहो। फल अक्षर भक्ति मार्ग का है, वर्षा ठीक है, बेहद बाप को याद करने से वर्षा मिलता है, और कोई उपाय नहीं। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है, वो समझते हैं हम भारत का प्राचीन राजयोग सीखते हैं, कौन समझते हैं? वो गुरुओं के जो चेले हैं वो समझते हैं हम प्राचीन राजयोग सीखते हैं, बाबा समझाते हैं, वो ड्रामा अनुसार हठयोगी बन जाते हैं। कौन? जो उन गुरुओं से सीखते हैं वो हठयोगी बन जाते हैं। राजयोग अब तुम सीखते हो, क्योंकि अब संगम युग है, उन्हों का धर्म अलग है। वास्तव में उनको गुरु नहीं करना चाहिए, किनको? उनको गुरु नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो है निवृत्ति मार्ग वाले, न खुद प्रवृत्ति में रहते हैं और न दूसरों को प्रवृत्ति की शिक्षा दे सकते हैं। कौन? दुनिया वाले गुरु है? कौन? ब्राह्मणों की दुनिया की भी बात है, पहले ही बता दिया गया तुम्हारे में इतनी बड़ी विश्व के अंदर तुम बच्चों का अपना ही छोटा सा संसार है। इस छोटे से संसार में हर प्रकार की आत्माएं, ब्राह्मणों की दुनिया में हर प्रकार के ब्राह्मण मौजूद है, तो सन्यासी बनने वाले भी ब्राह्मणों की दुनिया में। तो मोस्टली जितने भी आश्रम खुले हुए हैं उनमें सब संन्यास आश्रम है या गृहस्थ आश्रम है क्या? क्यों? हाँ, संन्यास आश्रम इसलिए कि वहाँ प्रवृत्ति